है। तिंग प्रत्यय का अर्थ कर्ता ही मानना चाहिए। व्यापार अर्थ मीमांसकों का जो मानना है वह उचित नहीं है। यही प्रसंग अभी चल रहा है। तो इससे पहले पाठ में ये बात आई थी कि पचति देवदत्तः में अभेदान्वय होता है। इसमें एक है कि अन्वय दो प्रकार का होता है, एक अभेदान्वय और एक भेदान्वय। तो जहाँ पर जो है ना एक ही अर्थ को बताया जाता है वहाँ अभेदान्वय होता है, और जहाँ भिन्न भिन्न अर्थ को बताया जाता है वहाँ भेदान्वय होता है। तो इसमें ये कहा गया कि देवदत्तः और पचति इन दोनों में अभेदान्वय होता है, माने यह दोनों एक ही अर्थ को बताता है। इसलिए देवदत्तः जिस कर्ता अर्थ को बताता है उसी कर्ता अर्थ को पचति का जो ती है वो भी उसी अर्थ को बताएगा, इसलिए कर्ता को ती का अर्थ मानना चाहिए। ये तो तिंगंत स्थल है पचति देवदत्तः, और कृदंत स्थल जो है पक्ता देवदत्तः, वहाँ भी यही होता है कि देवदत्तः जिस कर्ता अर्थ को बताता है उसी कर्ता अर्थ को पक्ता का जो तृच प्रत्यय है कृत प्रत्यय वो भी उसी व्यक्ति को बताता है, उसी कर्ता को बताता है। तो व्याकरणों का ये कहना है कि चूंकि पचति देवदत्ता में दोनों का अभेदान्वय होता है, पक्ता देवदत्ता में दोनों का अभेदान्वय होता है, माने दोनों में अभेद संबंध है, अभिन्न अर्थ को बताता है, तो अभिन्न अर्थ को बताने का के कारण जो है कर्ता अर्थ मानना चाहिए। इस पर मीमांसकों ने ये कहा था कि अभेदान्वय के लिए ने समान विभक्ति का होना जरूरी होता है, ये नियम है इस पर भैया। और यहाँ पर समान विभक्ति नहीं है क्योंकि पचति तिंगंत है और देवदत्ता सुबंत है, पक्ता जो है वह कृदंत है प्रथमांत, पक्ता जो है कृदंत है और देवदत्ता जो है वह सुबंत है। तो इस तरह से जब पक्ता प्रथमांत और देवदत्ता प्रथमांत, यहाँ तो ये बात लागू है कि समान विभक्ति तत्व है, लेकिन तिंगंत स्थल में ये बात नहीं है। पचति तिंगंत हो गया, देवदत्ता सुबंत हो गया, तो समान विभक्ति नहीं है, इसलिए वहाँ अभेद बोध नहीं होगा। इस पर व्याकरणों ने कहा कि ये नियम है तो, लेकिन ये सार्वत्रिक नहीं है, यह नियम हर जगह लागू नहीं होता है। तच्च अत्र नास्ति इति वाच्यम्। जैसे सोमेन यजेत में सोमेन सुबंत है और यजेत तिंगंत है, भिन्न भिन्न विभक्ति है, समान विभक्ति नहीं है। ऐसे स्तोकम सुबंत है, पचति तिंगंत है। राजपुरुषा में देखिए तो राज में जो नस विभक्ति आती है राज्ञः पुरुषः, फिर समास होकर के राजपुरुषः बनता है, तो इसमें नस विभक्ति का लोप हो गया है और पुरुषः में सुविभक्ति है, तो एक विभक्ति वाला है और एक बिना विभक्ति वाला है, फिर भी जो है ना इन सबों में अभेद बोध होता है। तो ये जो आपने कहा कि समान विभक्ति नहीं होने से पचति देवदत्ता में अभेदान्वय बोध नहीं होगा, और उसके आधार पर आप तिंग का अर्थ कर्ता नहीं मान सकते, ये बात सही नहीं है। जहाँ असमान विभक्ति होती है वहाँ भी अभेद बोध होता है। अब आगे फिर जो है मीमांसक एक नई बात बताते हैं, कहते हैं कि ऐसा है कि पचति देवदत्ता में ती का अर्थ जो है तिंग का अर्थ भावना ही है, व्यापार ही है, और कर्ता अर्थ जो है उसको हम लक्षणा से ले आएंगे, उसको शक्ति से अभिधा से कर्ता अर्थ लाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम जब लक्षणा से कर्ता अर्थ को ले आएंगे तो सामानाधिकरण्य हो जाएगा। कैसे सामानाधिकरण्य हो जाएगा? क्योंकि पचति देवदत्ता में देवदत्ता का अर्थ कर्ता है, और लक्षणा के द्वारा पचति का जो ती है वह भी कर्ता अर्थ को बता देगा, तो दोनों का एक ही अर्थ हो जाने से उसमें सामानाधिकरण्य माना जाएगा। तो लक्षणा से ही हम कर्ता अर्थ का लाभ करेंगे, ये उनका अभिप्राय है मीमांसकों का। यहाँ पर एक नया शब्द इन्होंने प्रयोग किया है सामानाधिकरण्यम, तो इसको मैं समझा देता हूँ, और अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। इसका विग्रह जो है सामानाधिकरण्यम का क्या होगा, इसको विग्रह भी कहते हैं और व्युत्पत्ति भी कहते हैं, तो मैं बोलता हूँ, आप चाहें तो लिख लें। समानम अधिकरणम, समानम अधिकरणम बराबर वाच्यम समानम अधिकरणम बराबर वाच्यम ययोह ते पदे समानाधिकरणे। फिर से बोलता हूँ, समानम अधिकरणम बराबर वाच्यम ययोह ते पदे समानाधिकरणे, ययोह ते पदे समानाधिकरणे। लिख लिया होगा आपने, ययोह ते पदे समानाधिकरणे। फिर आगे कामा देकर के लिखना है, तयोर भावः सामानाधिकरण्यम्, तयोर भावः सामानाधिकरण्यम्, तयोर भावः सामानाधिकरण्यम्। एक बार फिर से बोलता हूँ, समानम अधिकरणम बराबर वाच्यम ययोह ते पदे समानाधिकरणे कामा तयोर भावः सामानाधिकरण्यम् बराबर एकाधिकरण वृत्तित्वम्, एकाधिकरण वृत्तित्वम्, एकाधिकरण वृत्तित्वम्। तो ये एकाधिकरण वृत्तित्वम जो है यह सामानाधिकरण्यम का अर्थ है। और उससे पहले जो लिखाया है, समानम अधिकरणम वाच्यम ययोः ते पदे समानाधिकरणे तयोर भावः, ये समानाधिकरण्यम शब्द की व्युत्पत्ति है। तो पहले हम व्युत्पत्ति समझा देते हैं, फिर अर्थ समझा देंगे। व्युत्पत्ति में कहा गया कि समानम अधिकरणम अर्थात वाच्यम, अधिकरणम का अर्थ लेना है यहाँ पर वाच्य। वाच्य का मतलब अभिधा शक्ति के द्वारा जो अर्थ का लाभ होता है, तो वाच्यम का मतलब हो गया अर्थ। तीन तरह का अर्थ होता है, एक होता है वाच्यार्थ, एक होता है लक्ष्यार्थ, एक होता है व्यंग्यार्थ। तो अभिधा के द्वारा, या अभिधा और शक्ति पर्यायवाची शब्द है, तो अभिधा के द्वारा अथवा शक्ति के द्वारा जो अर्थ का लाभ होता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं, और लक्षणा के द्वारा जिस अर्थ का लाभ होता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं, और व्यंजना के द्वारा जिस अर्थ का लाभ होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो जहाँ पर भी वाच्य आता है ना शास्त्र में, तो वाच्य का अर्थ अर्थ होता है। वो कौन सा अर्थ होता है, तो वो वाच्यार्थ होता है, माने अविधा संबंध के आधार पर अथवा शक्ति संबंध के आधार पर इस अर्थ का लाभ हुआ है। तो फिर से चलते हैं, समानम अधिकरणम अर्थात वाच्यम ययोह ते पदे समानाधिकरणे, माने समान है वाच्यार्थ ययोह, माने जिन दो पदों के, समान है अधिकरण अर्थात वाच्यार्थ जिन दो पदों के, उन दोनों पदों को क्या कहा जाएगा, समानाधिकरणे, उनको समानाधिकरण पद कहा जाएगा। अतयोर भाव समानाधिकरण्यम्, और उन दोनों पदों का जो भाव होगा, धर्म होगा, उस धर्म को कहेंगे समानाधिकरण्यम्। तो ये तो मैंने व्युत्पत्ति का मतलब बताया। अब समानाधिकरण्यम का जो अर्थ लिखाया हमने, एकाधिकरण वृत्तित्वम, इसको समझना है। इसमें तीन शब्द हैं, एक अधिकरण वृत्तित्वम, तो एक का अर्थ है समान, अधिकरण का अर्थ है यहाँ पर वाच्यार्थ या अर्थ कह लीजिए, और वृत्तित्वम मतलब विद्यमान होना। तो पूरे का क्या अर्थ होगा कि समान अर्थ में विद्यमान होना, एक अधिकरण वृत्तित्वम। एक का अर्थ हुआ समान, अधिकरण का अर्थ हुआ अर्थ, और वृत्तित्व मतलब विद्यमान होना। तो एक अर्थ में विद्यमान होना, यही है समानाधिकरण्यम का अर्थ। अब ग्रंथ में चलते हैं, मीमांसकों ने कहा कि लक्षणया कर्तुः उक्तत्वात्, कि देवदत्तः पचति में ती का जो अर्थ है व्यापार है, ये अर्थ कौन सा, वाच्यार्थ व्यापार है, और लक्षणा के द्वारा वहाँ पर हम कर्ता अर्थ ले आएंगे, फिर समानाधिकरण्य हो जाएगा, माने एक अधिकरण वृत्तित्व हो जाएगा, माने कर्ता अर्थ को ती भी बताएगा लेकिन लक्षणा के द्वारा बताएगा और देवदत्तः जो है अभिधा के द्वारा कर्तार्थ को बताएगा। तो एक अधिकरण में दोनों विद्यमान हो गए ना, एक अर्थ में दोनों विद्यमान हो गए तो सामानाधिकरण्य हो जाएगा। वैयाकरणों ने कहा था कि सामानाधिकरण्य के लिए अभिधा से ही जो है दोनों का कर्तार्थ मानना चाहिए। उसका इन्होंने कहा कि ऐसा है कि कर्तार्थ हम मानेंगे लेकिन अभिधा से नहीं मान करके लक्षणा से मानेंगे, फिर सामानाधिकरण करेंगे। इस पर जो है वैयाकरण आपत्ति करते हैं, कहा कि ऐसा अगर आप मानते हैं तो पिंगाक्षी आदि योगिका नाम अभी द्रव्य वाचित्व अनापत्ति है। ऐसा है कि आपत्ति और अनापत्ति इसका बहुत प्रयोग मिलेगा आपको शास्त्र में। तो जहाँ आपत्ति हो ना तो उसका अर्थ लेना है होना, और अनापत्ति हो शब्द हो तो अर्थ लेना है कि न होना। तो यहाँ पर देखिए अनापत्ति है लिखा है, तो पिंगाक्षी आदि यौगिक शब्द का भी जो है द्रव्यवाचित्व की अनापत्ति होगी, माने वह द्रव्यवाची नहीं हो पाएगा। अब यहाँ भी कुछ शब्द नए शब्द आए हैं उसको समझना है। द्रव्यवाची इसका मतलब होता है कि द्रव्य का बोधक जो होगा वो होगा द्रव्यवाची। संज्ञावाची मतलब संज्ञा का जो बोधक है उसको कहेंगे संज्ञावाची, ऐसे ही द्रव्यवाची। तो द्रव्य अर्थ को जो बताता है वो हो गया द्रव्यवाची। एक शब्द आया यौगिक शब्द, ये यौगिक क्या है? तो तीन तरह के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्या क्या? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो जो जिसमें एक ही शब्द रहता है वह होता है रूढ़ शब्द, और दो शब्दों को मिलाकर के जो एक शब्द बनता है उसको कहते हैं यौगिक शब्द, ठीक है ना। तो यहाँ एक शब्द आया फिर पिंगाक्षी आदि, पिंगाक्षी शब्द आया है, और आदि से ना किसको लेना है वो हम आगे बताएंगे। तो पिंगाक्षी का मतलब होता है पिंगे अक्षिणी यस्याह सा पिंगाक्षी। पिंग कहते हैं पीले कलर को, तो पीले कलर वाली आँख है जिसकी, उसको कहेंगे हम पिंगाक्षी। ये असल में पिंगाक्षी जो है ना, ये गोवत्सा का विशेषण है, माने इसका अर्थ होता है गोवत्सा, माने गाय का बच्चा, गाय की बच्ची, जिसको बच्चिया बोलते हैं हिंदी में। तो गोवत्सा अर्थ होता है पिंगाक्षी का। वो गोवत्सा क्या है? द्रव्य है, और उस द्रव्य का वाचक होता है यहाँ पर पिंगाक्षी शब्द। और यह पिंगाक्षी जो है यह यौगिक शब्द है, क्योंकि दो शब्दों से बना है, एक पिंग शब्द से बना है और एक अक्षी शब्द से बना है। तो वही वैयाकरण कहते हैं कि अगर आप लक्षणा करेंगे तो लक्षणा के द्वारा जब अर्थ मिलता है ना तो उसको वाची नहीं कहा जाता है, उसको लक्षक कहा जाता है। तो वही कह रहे हैं कि अगर आप लक्षणा से कर्ता अर्थ को उक्त करेंगे तो पिंगाक्षी आदि जो यौगिक शब्द है जिसका आप लोग जो है ना द्रव्यवाचक मानते हैं, द्रव्यवाची मानते हैं पिंगाक्षी आदि शब्द को, वह भी अब क्या होगा? द्रव्यवाची नहीं होकर के द्रव्य लक्षक कहलाने लगेगा। जबकि उनके मीमांसकों के मत में ऐसा नहीं है, पिंगाक्षी आदि को ना द्रव्य का वाची ही माना जाता है, द्रव्य का लक्षक नहीं माना जाता। ताकि ऐसा है और भी है, एवं वैश्व देवी इत्यादि तद्धिता नाम अभी, ताकि वैश्व देवी यह जो प्रयोग है यह तद्धित प्रत्यय वाला प्रयोग है, इसका अर्थ होता है विश्वे देवा देवता अस्याहा, माने विश्वे देवा नाम के देवता जिनके हों, जिनके संबंधी हों, उनको कहा जाता है वैश्व देवी। यहाँ पर शास्य देवता सूत्र से संबंध अर्थ में अण प्रत्यय होता है, फिर वैश्व देवी बनता है। तो यहाँ भी वैश्व देवी को जो भी जो है ना वाचक माना जाता है मीमांसा दर्शन में, लेकिन आप अगर लक्षणा से इस तरह से अर्थ का लाभ करने लगेंगे तो ये भी वाचक नहीं बन पाएगा। वही कह रहे हैं कि एवं वैश्व देवी इत्यादि तद्धिता नाम भी, जैसे पिंगाक्षी आदि जो यौगिक शब्द है वह द्रव्य का वाचक नहीं बन पाएगा लक्षणा करने से, ऐसे ही वैश्व देवी इत्यादि जो तद्धित प्रयोग है वह भी द्रव्य का वाचक नहीं बन पाएगा यदि आप लक्षणा करेंगे। अच्छा, आगे फिर कहते हैं कि अनेक मन्य पदार्थ शास देवता इतनु शासन नाम। पिंगाक्षी में जो है ना बहुव्रीही समास है, और बहुव्रीही समास किस सूत्र से होता है, तो अनेक मन्य पदार्थ से। वही बता रहे हैं कि अनेक मन्य पदार्थ से पिंगाक्षी में बहुव्रीही समास हुआ है, और शास देवता इस तद्धित प्रकरण के सूत्र से वैष्णोदेवी में अन प्रत्यय हुआ है। इति अनुशासन है ना, ऐसा जो है व्याकरण शास्त्र का अनुशासन है। और फिर दोनों का विग्रह बताते हैं। पिंगाक्षी का विग्रह क्या होगा, तो पिंगे अक्षिणी यस्याहा, मैंने बताया था पहले, पिंग मतलब पीला कलर, तो पीले कलर वाली आंख है जिसकी, और विश्वे देवा देवता अस्याहा, और विश्वे देवा नाम के देवता जिनके संबंधी हैं। इति विग्रह दर्शनार्थ इस तरह से पिंगाक्षी का और वैष्णोदेवी का विग्रह किया जाता है। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे तो अनेक मन्य पदार्थ से जो बहुव्रीहि समास होता है वो षष्ठी के अर्थ में होता है, और शास्य देवता से जो अन प्रत्यय होता है वो भी षष्ठी के अर्थ में होता है। षष्ठी का अर्थ क्या है, संबंध है, तो संबंध अर्थ में बहुव्रीहि समास हुआ, और संबंध अर्थ में वैष्णोदेवी में तद्धित प्रत्यय हुआ। तो संबंध अर्थ को ही बताएगा ना, जिस अर्थ में समास हुआ, जिस अर्थ में प्रत्यय हुआ, उसी अर्थ को बताएगा। तो पिंगाक्षी किसको बताएगा, संबंध अर्थ को बताएगा। वैष्णोदेवी किस अर्थ को बताएगा, संबंध अर्थ को बताएगा, संबंधी अर्थ को नहीं बताएगा। तो संबंधी अर्थ को बताने के लिए आपको क्या करना होगा, लक्षणा करनी पड़ेगी, और जब लक्षणा करेंगे तो फिर वह वाचक नहीं होगा द्रव्य का, क्योंकि फिर तो वह लक्षक होगा, वाचक नहीं होगा। जैसा मैंने कहा ना कि तीन तरह का अर्थ होता है, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, इसी तरह से शब्द भी तीन प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। जो अभिधा से बोध कराता है उसको वाचक कहते हैं, जो लक्षणा से बोध कराता है उसे लक्षक कहते हैं, और जो व्यंजना से बोध कराता है उसको व्यंजक कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पिंगाक्षी आदि जो यौगिक शब्द है, और वैष्णोदेवी आदि जो तद्धित शब्द है, इन शब्दों में आप क्या करेंगे, लक्षणा करेंगे संबंधी अर्थ को लाने के लिए, तो फिर ये दोनों शब्द जो हैं ये लक्षक कहलाएंगे, द्रव्यवाचक नहीं कहलाएंगे। इस तरह से लक्षणा जो कर रहे थे मीमांसक, उसका इन्होंने खंडन किया। अब इसी के समर्थन में अपनी बात को कंप्लीट करना चाहते हैं भैयाकरण, लेकिन समय रिकॉर्डिंग का ख़त्म हो रहा है, इसको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, ठीक है।